सभी श्रोताओं और शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। डिज़ाइन शब्द आते ही कुछ सुंदरता से, कलात्मक रूप से चीज़ें हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे ख्वाब में आने लगती हैं। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन अनेकों शब्द से या तरीक डिज़ाइन शब्द कई चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। आपका ड्रेस डिज़ाइन हो सकता है, आपका गारमेंट डिज़ाइन हो सकता है, आपका फर्नीचर डिज़ाइन हो सकता है, लेदर डिज़ाइन और आपका बिल्डिंग डिज़ाइन, किसी भी चीज़ में आप डिज़ाइन खोजते हैं। और डिज़ाइंस के आजकल काफ़ी इंस्टीट्यूट्स तक खुल गए हैं। आदमी जब बाज़ार जाता है तो डिज़ाइन के बल पर ही तय करता है कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है। दुकानदार से पूछता है कुछ और डिज़ाइन दिखाओ, ये इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा। बेसिक मुद्दा उसकी रूह ये है कि डिज़ाइन कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जो बात फोकस कर रहे हैं वो एम्ब्रॉयडरी की, और इसी जन हमने देखा है जो एम्ब्रॉयडरी चूँकि सदा ही हिंदुस्तान की एक मशहूर कलाओं में से रही है और अलग अलग रूप में, अलग अलग परिसज्जाओं में, अलग अलग ढंग से रंगों में ढाली जाती है। और हमारे यहाँ की एम्ब्रॉयडरी पूरे वर्ल्ड ओवर मशहूर है। हम पिछले कई बातों से इंडियन एम्ब्रॉयडरी के रूप में बात करते हैं और आज हम डिज़ाइन को फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से डिज़ाइन चुने जाते हैं और उनको बनाया जाता है कि वो इतने मशहूर हो जाते हैं। तो उसकी बेसिक जड़ क्या है, किस तरीके से वो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनका टाइप हो सकता है, कैसे वो चुने जाते हैं, कैसे प्लेस करे जाते हैं। और एक और ख़ास बात कि एक पेपर पे अगर डिज़ाइन बनाया है तो उसको कपड़े पे कैसे उतारा जाता है कि वो एम्ब्रॉयडरी के लिए तैयार हो सके।
जी,
एक ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है कि और जो बिल्कुल नहीं जानते कि कैसे किया जाता है उनके लिए बड़ा अनूठा सा हो जाता है।
जिज्ञासा,
अरे भाई इतनी बड़ी साड़ी है 6 मीटर की, इसमें तुम कैसे काट लेते हो, सब एक सही दिखता है। आपके कुर्ते में सब एक डिज़ाइन होता है, उसको कैसे काट लेते हो हमें समझ नहीं आता है। तो चलिए इस गुत्थी को हम थोड़ा अनफोल्ड करते हैं। डिज़ाइन बेसिकली हम वहाँ से शुरू करते हैं कि एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग को हम एक रूप रंग देते हैं और जो डिज़ाइनर होता है वो फाइनल आउटपुट को ख्वाब में देख सकता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। और कब डिज़ाइन को हम डिज़ाइन कहते हैं, जब वो हमें सुंदर लगता है, यानी कि अट्रैक्टिव हो, आई अपीलिंग हो, एस्थेटिकली अच्छे से प्लेस किया जा सके। जो थोड़ा भी आर्ट जानते हैं उसको हम यहाँ डिटेल में नहीं कहेंगे क्योंकि हम और चीज़ों की चर्चा जाए, पर बेसिक रहेगा कुछ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट रहते हैं। जब डिज़ाइन की बात आती है तो यानी कि आर्ट होगी ही होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट रहते हैं, तब वो फाइनल डिज़ाइन आपका कपड़े पर या किसी चीज़ पर प्लेस किया जाता, उन बातों को ध्यान रख के। जब हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो आपके पास लाइन हो सकता है, तरह तरह से आप लाइन को प्लेस करते हैं, तो आप स्क्वायर बना देते हैं, कुछ आप कर्व देते हैं
जी,
कुछ सर्किल बनाते हैं, कुछ डॉट्स बनाते हैं, कुछ रेक्टेंगल बनाते हैं, कुछ ट्राइंगल बनाते हैं, ये सब आपके ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। फिर आप कुछ नेचर में देखते हैं कि भाई फूल हमारा जो है वो ऐसा दिखता है, यानी कि ऊपर से आधा सर्कल जोड़ दें और दो लाइनें खींच दें और उनको पास पास रख दें तो वो एक फूल बन जाता है। अब एस सच भी हम कॉपी कर सकते हैं कि आप जैसे सामने बैठ के जैसा बाहर देख रहे हैं, फूल है, पत्ती है, पेड़ है, उनको देख सकते हैं, कुछ यूटेंसिल्स को देख सकते हैं, आपस में आप दोनों को रख सकते हैं और आप उसको एक डिज़ाइन के तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सब बातें हम कर रहे हैं वो बेसिक्स हैं कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट थे, कुछ सर्किल और इनको जोड़ के हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया
जी।
अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट भी मैं साथ में बात कर लूँ तो आगे बात समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट जब हम बात करते हैं, यानी कि डिज़ाइन कब अच्छा लगता है, एक रिदम हो उसमें। रिदम का मतलब एक के बाद एक चीज़ आए, यानी कि एक तो आपने 4 इंच के ऊपर लगा दी और दूसरा 7 इंच पे लगा दी, चौथा 12 इंच पे लगा दी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा
कहाँ पे
तारतम्य खत्म हो जाता है। तो रिदम बहुत जरूरी है। एक होता है प्रोपोर्शन, अगर आपको थोड़ा सा इरेटिक भी बनाना है फिर भी एक प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा। जैसे आधा आधा रख लीजिए, एक तिहाई दो तिहाई रख लीजिए, 1/4 3/4 रख लीजिए, तो ये एक जो बना हुआ है वो एक अलग बात हो जाती है। फिर इसमें टेक्सचर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। टेक्सचर कहते हैं सतह की जो उठाव और बैठाव, सादे शब्दों में
जी
उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। किसी भी कोई सतह भाई ये देखने में थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, ये सिल्किल लग रहा है, ये सब टेक्सचर के प्रकार होते हैं। तो ये बेसिक बात। और फिर एक हार्मनी, हार्मनी का मतलब सब कुछ फाइनली एक सब कुछ बिखरा हुआ नहीं, एक हार्मोनियस लुक आना चाहिए। जब ये सब चीजें किसी चीज में जुड़ जाती हैं और फिर वो एक सुंदरता प्रदान करती है, फिर वो हम डिजाइन को एक अच्छा डिजाइन कहते हैं। तभी तो मैंने अभी बोला ना कि ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें ये सब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और एलिमेंट्स ऑफ ये सब छुपे हुए हैं। अब उसको धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं, ये आप भी एक अच्छा डिजाइनर बन सके। जब आपके किताब पढ़ रहे हैं तो आप डिजाइन के बेसिक चीजों को समझें, आंसर भी करें, और उसका पढ़ाने का पर्पस भी यही है कि आप उसको अप्लाई करें अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए या कहीं पे भी यूज करने के लिए, तो डिजाइन आप सुंदर से सुंदर बना। आर्टिस्ट किसको कहते हैं, जो एक कोई भी डिजाइन इस तरीके से बना सके कि लोगों को सुंदर लग सके, उनके मन को अच्छा लग सके, आंखों से भी सुंदर लगे और मन से भी सुंदर लगे, तब उसको एक अच्छा डिजाइन बोलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन बेसिक्स हम बात करेंगे। तो ये 4 या 5 तरीके के हम चुन सकते हैं
जी।
सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन। जैसे ही हम ज्योमेट्रिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ज्योमेट्री से मत सोचिए। ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब होता है सिर्फ लाइन डॉट और सर्किल को लेके जो डिजाइन बनाया जाता है उसको हम ज्योमेट्रिक डिजाइन बोलते हैं। यानी कि 4 लाइनें अगर बराबर बराबर हैं, उनको आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्क्वायर। जब 2 लाइनें लंबी और 2 छोटी और आपस में जोड़ दी तो क्या बन गया, हमारा रेक्टेंगल। जब 3 बराबर की लाइनें हमने आपस में जोड़ दी तो बन गया ट्रायंगल। तो ऐसे आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम फ्लावर भी बना सकते हैं। आपने एक लाइन बनाई, एक स्क्वायर ऊपर रखा या ट्रायंगल ऊपर रखा, एक साइड में आपने 2-4 लाइनें बनाई, बीच में लाइन खींच दी, वो आपका लीफ हो गया। मेरे लिए वो ज्योमेट्रिक। तो जब छोटा बच्चा पहली क्लास में या नर्सरी क्लास में ड्राइंग्स पढ़ाई जाती है उसको, तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ाए जाते हैं और वहीं से ले लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड प्रकार होता है आपका सिंप्लीफाइड डिजाइन। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है कि थोड़ा सा जो स्क्वायर लाइन हमने बनाई थी उसमें थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। और ज्योमेट्रिकल शॉप को भी एक सिंपल सा एक नेचर से भी बनाए और एकदम से परसीव हो सके कि भाई ये फूल है, ये पत्ती है, ये सन है, ये घर है। कैसे, तो आप समझ लीजिए, जो सुनने वाले हैं आपके घर में आपने देखा होगा बच्चों की ड्राइंग कैसी होती है। आप जब फूल पत्ती थोड़ी थोड़ी जब एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे तो आप छोटी लाइनें ही बनाना सीखेंगे, सिंपल डिजाइन को आप एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे। तो दीज आर सिंप्लीफाइड डिजाइन। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स तरीके में आते हैं, यानी कि नेचुरलाइज्ड डिजाइन या नेचुरल डिजाइन। तो नेचर जब बात करते हैं तो यानी कि जैसा भी नेचर में हमें नजर आता है वो आपके फ्लावर्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकती है, वाइन्स हो सकते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी हमारी लटें, बर्ड्स हो सकती हैं, एनिमल है, रिवर है, रोड्स हैं, हिल साइड्स है। कैसे हम बनाते थे, ट्राइंगल हमने पूरी लाइन में ऊपर बना लिया, बन गया हिल। 2 लाइनें लहरें बना दी, बन गया उसमें हमने नीला पानी बनाया और बन गया हमारी रिवर। इधर हमने एक हट बना दी, इधर हमने ग्रीन ग्रास बना दी, हमारी सीनरी तैयार हो गई। फिर भी वो एक तैयार हो गई और मैच करती है हमारी नेचर से। तो ये हो गए हमारे नेचुरलाइज डिज़ाइन। फिर उनको हम आगे किस तरीके से सिंपल फॉर्म में रखेंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो धीरे धीरे आगे हम सीख सकते। फोर्थ आते हैं स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन। स्टाइलाइज क्या होते हैं कि थोड़े से डेकोरेटिव, मतलब थोड़ा सा और हमने उनको सीक्वेंस डाल दिया, हमने उसको कर्व दे दिया डिज़ाइन को, उसमें तरह तरह की हमने टेक्सचर रंग भरने की कोशिश करी, कोई मोटा बनाया कोई छोटा बनाया, उसी को हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं तो ये स्टाइलाइज डिज़ाइन कहेंगे हम इसको। थोड़े जो इधर पहना है कि भाई ये नेचर से मिल रहे हैं, क्योंकि फूल जैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा है। ये हमारा टेक्सचर डिज़ाइन हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं हम उससे असेस कर सकते हैं। जो सुनने वाले अपने आसपास की चीज़ों को देखिए तो और उसको असेस करने की कोशिश करिए ये कौन सी कैटेगरी का डिज़ाइन है। आपकी बुक में भी हमने देखा काफ़ी सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं और उसमें आप लिखिए, पहचानिए, फिर उनको नोट करिए कि किस तरीके का डिज़ाइन है, कौन सी कैटेगरी में आता है। फिर एक और डिज़ाइन होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बहुत पॉपुलर वर्ड है जिसका यानी कि उसको रूप में नहीं बांधा जा सकता, मगर कुरूप नहीं है, फिर भी वो आई अपील करता है, फिर भी वो एस्थेटिक सेंस रखता है। तो क्या यानी कि किसी भी चीज को डिपिक्ट कर सकते हैं मगर उसकी कोई जो है सीमा नहीं है। कि हमने चार स्क्वायर बराबर बराबर रख दिए, उस स्क्वायर को ही हमने कहीं पे कर्व दे दिया, कहीं उसको खींच दिया और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर डाल दिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना दिए। तो हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा, जब ये शुरू हुई थी आर्ट तो लगता था समझ नहीं आ रहा मगर सुंदर लग रहा है जी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू हो गया। अब मैं उसकी बात करूंगी कि किस तरीके से हम बेसिक यूनिट क्या होती हैं। मोटिव, MOTIF, यानी कि स्मॉलेस्ट मोटिव और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजाइन, उसको हम मोटिव बोलते हैं।
अच्छा।
फिर पैटर्न, यानी कि उस पैटर्न को ही एक डिफरेंट मैनर में रिपीट करते जाते हैं, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। और जब प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी हार्मनी, बैलेंस, प्रोपोर्शन बताए थे, उसमें उन पैटर्न्स को जब किसी प्रिंसिपल के तहत हम प्लेस करते हैं, चाहे वो बॉर्डर करें, हम टेम्पल बनाएं, कुछ बनाएं, तो हम उसको डिजाइन बोलते हैं।
अच्छा।
तो इस तरीके से डिजाइन का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं ना, हम अनफोल्ड करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो मोटिव, पैटर्न एंड डिजाइन। तो आपने डिजाइन के बेसिक्स सीख लिए, अब देखते हैं कि डिजाइन एम्ब्रॉयडरी के लिए फाइनल करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन सिंपल टेक्निकल वर्ड्स वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डिजाइन। सबसे पहले तो पर्पस, किस लिए हम वो डिजाइन बना रहे हैं। चाहते हैं भाई आपके लहंगे के लिए बनना है, आपकी शर्ट के लिए बनना है, या किसी बेबी फ्रॉक के लिए बनना है, या किसी हमारी बेडशीट या कुशन कवर के लिए बनना है। सबसे पहले वो पर्पस हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही डिजाइन सब जगह तो यूज नहीं हो सकता। बेबी फ्रॉक में तो हम हो सकता है कोई हम फेरी बना दे, डेंटिस्ट या फ्लावर बना दे, वो हमारा उस पर यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले दूसरा कि हमारा जो गारमेंट जिसके लिए हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है उसका शेप क्या है और साइज क्या है। एक शर्ट है उसका शेप साइज अलग होगा, ब्लाउज का अलग होगा, साड़ी का अलग होगा। जो नॉर्मली हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बेबी फ्रॉक कितनी बड़ी है, क्या हमें बनाना है, उस पर हम डिपेंड करते हैं। फुल लेडी का लहंगा एम्ब्रॉयडरी करना है वो अलग बात होगी, अगर हमारी 5 साल की किसी लड़की का लहंगा बनना है उस पर अलग डिज़ाइन होगा
जी।
तो हमें साइज पर ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि कपड़े का हमारा कलर क्या है, टेक्सचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्गेंडी की कोई साड़ी या फ्रॉक आपको लेनी है, उस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, या आपको एक वुलन शर्ट बनानी है, आजकल वो काफ़ी चल रहे हैं जो कश्मीरी लोग बनाते हैं, जैसे वो बाकी चीज़ पे भी एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो वो मोटा कपड़ा हो गया, ऑर्गेंडी एक फाइन क्लॉथ हो गया, तो दोनों के लिए सेम डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो उस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा ओकेजन, चौथा ओकेजन क्या है, क्या ये एम्ब्रॉयडरी रेगुलर के लिए है या सैंपल आप बना रहे हैं या किसी शादी के लिए है या किसी स्पेशल डेकोरेटिव पर्पस के लिए बना रहे हैं कि भाई हमने कुशन एम्ब्रॉयडरी कर लिए, हमने हैंकी एम्ब्रॉयडरी कर लिए, नैपकिन एम्ब्रॉयडरी कर लिए, टेबल का एम्ब्रॉयडरी कर लिए, ये पहले बहुत कॉमन थी और हमें ये ध्यान देना होता है। फिर हमें ध्यान देना होता है कि मेन है या वुमेन है, चाइल्ड है या ओल्ड पर्सन है, और उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान देते हैं कि उसकी एज क्या है, एज ऑफ द वेयरर, फिर उसको कहाँ वो इस्तेमाल करनी है। भाई एक बार पहनी, रख दी बड़े संभाल के, ठीक है उस हिसाब से हमने कर ली। अगर उसको रोजमर्रा ही पहननी है, आए दिन हमको इस्तेमाल करनी है, तो उसकी हमें वो देखनी पड़ेगी। फिर उसको कम्फर्ट कितना लगता है। कई बार हमने देखा है कि एम्ब्रॉयडरी में जो अंदर से अस्तर नहीं लगा है तो स्किन पे वो डायरेक्ट चुभती है, अंदर की जो धागे होते हैं उसके
जी,
और फट भी जाते हैं। इवन साड़ियों में भी है कि भाई पीछे की एम्ब्रॉयडरी के धागे टूट गए, एम्ब्रॉयडरी उधड़ने लग गई,
लग जाती
जी। तो स्किन को भी प्रॉब्लम है और उसकी मेंटेनेंस को भी प्रॉब्लम है। और कुशन हमने बहुत मोटा 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 काट लिया, एम्ब्रॉयडरी बेडशीट हमने बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, पर हमने कमर लगाई तो कुशन हमारी चुभ रही है, बेडशीट पे हम लेटने चले तो भाई ये एम्ब्रॉयडरी शेम्ब्रॉयडरी नहीं, सोने में जो है डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कम्फर्ट तो हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एम्फेसिस पॉइंट पर। एम्ब्रॉयडरी किस लिए कर रहे हैं आप? उसकी शोभा बढ़ाने के लिए
जी,
उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुंदरता कहाँ बढ़ेगी? अब आप बैठ गए, बिल्कुल जो चीज अंदर को है आपकी छुप रही है, या उसका सलवार है तो ऊपर से छुप रहा है बाहर से, तो उस एरिया में तो आप एम्ब्रॉयडरी नहीं करेंगे, जो एरिया लहंगे का जो नीचे का एरिया है वहां करेंगे, ब्लाउज में बाह में करेंगे, दुपट्टे में करेंगे, साड़ी के पल्लू में करेंगे, साड़ी के बॉर्डर में करेंगे, फ्रॉक में करेंगे, योक में करेंगे, या कॉलर्स हैं उस पे करेंगे, वहां पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो कुछ लगेगा कि हाँ एम्ब्रॉयडरी का
शो हो रहा है,
उससे आई अपील बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया और ये तय कर लिया भाई किस चीज़ के लिए हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं
जी।
कई बार क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी जो हमने डिज़ाइन बनाया है हम सेम डिज़ाइन रखना चाहते हैं, नहीं भी रखना चाहिए, पर जो डिज़ाइन हमें पसंद आया वो बहुत बड़ा था, उसको हम छोटे पे हम करना चाहते हैं, या हमारा छोटा सा हमें फ्लावर का जो शेप है वो डिज़ाइन हमें बहुत बड़ा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मगर उसे हम बड़े एरिया में ले आना चाहते हैं। यानी कि डिज़ाइन को हमें एनलार्ज भी करना हो सकता है और रिड्यूस भी करना हो सकता है। तो कैसे करा जाए? सपोज एक डिज़ाइन हमारे 4x4 का है और एनलार्ज करना है तो हम ग्राफ पेपर लेंगे जिसमें हम उस डिज़ाइन के 4x4 को बराबर से जो भी कर्व है लाइन है उसको ही हम 8x8 के ग्राफ पेपर में बनाएंगे, उतना ही बड़ा। उसी तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं, 6 का है तो हम 2 में ला सकते हैं, 6 के डिज़ाइन को हम ग्राफ में, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स उस ग्राफ में हैं, जितना एरिया उसमें आ रहा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, जो आप अधिकतर मैन्युअली करते हैं, और डिज़ाइन सेम रहना चाहिए, उसको ही हम एनलार्जमेंट रिडक्शन। आजकल हालांकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आप मशीन जो आपकी फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं उसमें भी कुछ लोग ये कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में भी ये कई जगहों पे सुविधाएं हो सकती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। तो यानी कि ये एक अहम बात है कि आपको एनलार्जमेंट और रिडक्शन करना होता है। फिर जैसे हम प्लान कर रहे थे कि भाई कौन जो हमारा यूज़ कैसा है, हमारा वेट कैसा है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा आती है, वो है कि आप जिस फैब्रिक को चुन रहे हैं उसके हिसाब से ही आप धागा लेंगे, कलर चुनेंगे, और ये भी देखेंगे कि उसका वेट, फाइनल वेट कैसा रहेगा, उसकी मेंटेनेंस कैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर कलर थ्रेड कलर ने कलर छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा. अगर आपने डिजाइन तो बहुत सुंदर बना दिया मगर कपड़ा बहुत हल्का है
जी.
और जो कि बहुत ये कॉमनली देखा गया है कि हमने डिजाइन हमने एम्ब्रॉयडरी कर दी, डिजाइन तो एम्ब्रॉयडरी का कुछ नहीं होता, कपड़ा फट जाता है,
फट जाता है
और उल्टा भी होता है. जैसे अगर आप पीछे से नहीं देखें धागे को या अच्छे से डिजाइनिंग नहीं करी, वो एम्ब्रॉयडरी नहीं करी है, तो एक तार उधड़ता है पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी उधड़ जाती है. मशीन एम्ब्रॉयडरी में ये मैंने बहुत कॉमन देखा है. कई बारी वो जो आपने कपड़ा सुखाया बाहर वहाँ रेन आ रही है, धूप आ रही है, खराब हो गया. आप दिन भर खराब वो वॉश कर रहे हैं तो खराब हो गया, ड्राई क्लीनर को दिया सारी एम्ब्रॉयडरी उधड़ के आ गई. तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी हमें उतनी ही महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है जिससे आप उसको. अब आते हैं हम डिज़ाइन बना, चूज आपने कर लिया, अब उसको कैसे ट्रांसफ़र करें कपड़े में टू गेट रेडी टू एम्ब्रॉयडर. कढ़ाई शुरू करने से पहले आपको जो भी कपड़ा आपने चुना है, जो भी आपने डिज़ाइन चुना है, वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, इसके बहुत सारे मेथड हैं. अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप सीधे के सीधे कपड़े पे भी कर सकते हैं, या पहले पेपर पे डिज़ाइन बना लीजिए फिर उसको कपड़े पे बना लीजिए. कुछ हल्का डिज़ाइन बनाना है या आप अच्छे आर्टिस्ट हैं आप सीधे के सीधे पेपर पे डिज़ाइन बना सकते हैं. तो ये हुक कहलाता है डायरेक्ट मेथड. दूसरा होता है कार्बन पेपर मेथड, यानी कि कार्बन पेपर ब्लू ब्लैक कलर्ड भी आते हैं और कॉमनली ब्लू सब जगह मिल जाता है. और इसको पेपर जिस क्लॉथ पे डिज़ाइन रखा हुआ है, प्लेसमेंट के बारे में हम अलग बात करेंगे, वहाँ पे उल्टा रखा जाता है, यानी कि जो डार्क इंक वाली साइड है वो कपड़े की तरफ रहेगी, उसके ऊपर आप डिज़ाइन रखेंगे. ये ब्लाइंड मेथड जनरली कई बारी हो जाता है, आपको कपड़ा नहीं दिख रहा है तो लोग बार बार उठा के देखते रहते हैं, उसमें आपका डिज़ाइन बिगड़ने के चांसेस होते हैं. तो बेहतर है कि आप कपड़े को भी चारों तरफ से सेलो टेप से या जिस भी टेप से आप सील कर दें, चाहे पिन लगा लें, उसके ऊपर कार्बन पेपर लगाएं, डिज़ाइन रखें, उसको भी आप सील कर दें. और फिर आप एक डार्क पेन से, डार्क से भी ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रेशन आ सके. स्केच पेन से उतना गहरा नहीं होगा, बॉयल पॉइंट यूज़ करेंगे तो गहरा डिज़ाइन उस पर आ जाएगा. तो ये बात हो गई. तीसरा मेथड कहलाता है बैक ट्रेसिंग. बैक ट्रेसिंग भी एक आसान मेथड है. उसमें सिर्फ क्या करते हैं कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें एक बहुत डार्क कलर इस्तेमाल करते हैं, और वो कलर जो कि थोड़ा सा उसकी इंक कह लीजिए या जो 4B 6B की पेंसिल आती है उनसे आप बना लीजिए, और फिर उसको वो जो मोटे इंक बनाई है उसको आप रिवर्स कपड़े के ऊपर रख दीजिए. जिस तो इसमें कार्बन हट गया, सीधा का सीधा डिज़ाइन आपके कपड़े पर है. और वो कपड़ा भी जैसे हमने प्लेस करना बताया कि किनारे से सील कर दीजिए, उसका पर्पस ही है कि वो सरके नहीं, जिससे कि नहीं तो डिज़ाइन खराब हो जाए, होएगा बाद में आपको एम्ब्रॉयडरी में दिक्कत होगी और रीडिज़ाइनिंग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है. और वो जो बैक ट्रेसिंग आपने लगाई है उसके ऊपर आप फिर से बॉल पेन चलाएंगी या कोई हार्ड पेंसिल चलाएंगी, जिससे कि वो जो डार्क कलर है वो उसके ऊपर
इम्प्रेशन जो उसका
आ जाता है. तो ये हो गया तीसरा मेथड. चौथा मेथड होता है बटर पेपर, जो कि बहुत कॉमन है. इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, डिज़ाइन जो है वो हमेशा के लिए आपके पास रेस्टोर
सुरक्षित रह जाता है
जी. बटर पेपर भी आप बना सकती हैं, बटर पेपर बाजार में मिल जाता है, बहुत वो भी नहीं है, और घर में भी अगर तुरंत आपको कुछ करना है तो एक ऑर्डिनरी जो घर में तेल होता है वो एक ऑर्डिनरी पेपर पे लगा दीजिए, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आप वो डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं. तो अब इसमें क्या है, कोई भी डिज़ाइन आपने जो बनाया उसका क्या करना है, जो डिज़ाइन तो आपने उस बटर पेपर पे बना लिया
जी.
मगर डिज़ाइन की आउटलाइन में आपको बारीक नीडल से पांच छेद करने होते हैं
जी.
और कुछ बड़ा डिज़ाइन हो तो आप वहाँ पर जो है सीधी मशीन चला दीजिए, खाली धागा नहीं, जिससे कि वो छेद आ जाए. उससे क्या बढ़िया रहता है कि जहाँ पे भी आपको वो बनाना हो उसके ऊपर लगाइए, आपको प्लेसमेंट भी आराम से दिखाई देती है, और फिर उस जगह आप कोई इंक लगा दीजिए, वो तो छेद से वो इंक पास ऑन हो जाती है और वहाँ पे वो डिजाइन ट्रेस हो जाता
ट्रेस
है। और जनरली जो ये होते हैं कि ये कॉमर्शियली काफी यूज होती है, उसमें जो केरोसिन ऑयल होता है और उसमें नील जो कपड़े धोने वाला नील है तो उसी का इस्तेमाल करके, या ब्लू चौक वगैरह भी आती है उसको इस्तेमाल करके, और अगर काले कपड़े डार्क कलर करना होता है तो वो लोग व्हाइट चौक का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें आप फटाफट फटाफट कॉटन बॉल से लगा दीजिए और आपके डिजाइन जो है उसके ऊपर छप जाता है, और ऊपर से आप ट्रेसिंग पेपर बटर पेपर हटा दीजिए, वो बटर पेपर को किनारे रख लीजिए, वो आपका फिर कितने। तो ये पैटर्न जैसे हमने अभी बात करी थी ना, मोटिफ आप एक ही बनाएंगे, मगर मोटिफ को आपने बटर पेपर पे डिजाइन कर लिया, छेद बना लिए, आप जैसा पैटर्न चाहे वहां
लगाते चले जाइए जी।
तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, एक बार की मेहनत है और आप सौ बार उसको
इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर पांचवा मेथड है यूजिंग द ग्लास प्लेट एंड लाइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है पर वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू ट्राई, और खासतौर से जो फाइन डिजाइन होते हैं
अच्छा
उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो आर्किटेक्चर वाले तो जनरली इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, पर एम्ब्रॉयडरी के लिए फाइन डिजाइंस में ये, क्योंकि जो आपने छेद करे वो भी आपके मोटे मोटे रहे, फाइन डिजाइंस में इनको बहुत इस्तेमाल। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे की सरफेस है वो कपड़े से थोड़ी ऊपर रहती है।
अच्छा,
या आपकी ग्लास टेबल हो तो आप नीचे से टेबल लैम्प से या किसी से लाइट देते हैं।
अच्छा,
और ऊपर आप डिजाइन कपड़ा रखते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं, कपड़े के ऊपर डिजाइन रखते हैं और नीचे से जो लाइट आ रही होती है तो आपका डिजाइन बहुत अच्छे से दिखाई देता है, जिससे आप ऊपर कपड़ा रख के उस पर ट्रेस कर सकते हैं।
अच्छा,
इसमें रिवर्स, पहले अभी हमने अभी तक जितने भी डिजाइन बोले, पहले कपड़ा रखा फिर डिजाइन रखा, इसमें हम रिवर्स करते हैं कि कपड़े का भी हमें दिखाई देगा
और
डिजाइन भी दिखाई देगा, फिर आप उसके ऊपर हाथ से बना सकते हैं। एक ये हो गया। एक और तरीका होता है टेम्पलेट बनाना।
अच्छा,
टेम्पलेट करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि बटर पेपर आप यूज कर सकते हैं हमेशा, इसी तरीके से टेम्पलेट भी आप हमेशा यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपने कटआउट बना लिया, कटआउट का जो है और वो आप हमें किसी भी चीज का बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का बना लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन। ये जनरली लार्ज डिजाइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उसमें कहीं कहीं छेद हो, डॉट हो, जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपको 1 फिट बाई 1 फिट का आपने टेम्पलेट बना लिया, उसमें आपने अंदर से थोड़े गोल या थोड़े थोड़े शेप में आपने वो जगहें काट ली, लीफ बनानी है आपको या कुछ आपने और डिज़ाइन बनाना है या छोटा एनिमल बनाना है, वो आपने वहाँ पे तैयार कर लिया, और जब आपने उस कार्डबोर्ड को उस पे क्लॉथ के ऊपर रखा है तो उसकी सिर्फ आपको आउटलाइन बनाने लगे पड़ेगी और आपका डिज़ाइन उस पे छप जाएगा, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट।
अच्छा,
कार्डबोर्ड का उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं
भाई,
जब भी आप कैसे आप स्टेंसिल बाजार वाले जो आपके काम करते हैं ये टेम्पलेट बना लेते हैं, वो स्टेंसिल का काम करते हैं तो टिन का बना लेते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो टिन का ना बना के हम कार्डबोर्ड का बना सकते हैं। तो बेसिक पर्पस यही है कि हमारे पास वो स्टेंसिल जैसा तैयार हो जाता है, और हमें चूंकि स्टेंसिल में पेंटिंग तो कर नहीं रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम वो किनारे किनारे हमने उसको ट्रेस कर लिया और हमारा डिजाइन हमारे क्लॉथ पर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता भी है। तो 6 मेथड हमने पढ़े, डायरेक्ट मेथड, कार्बन पेपर मेथड, ब्लॉक ट्रेसिंग मेथड, बटर पेपर मेथड यूजिंग ग्लास प्लेट एंड लाइट, ये ध्यान में रखिए, एंड यूजिंग द टेम्पलेट। अब डिज़ाइन तो हमने क्या क्या मेथड है लर्न करने, पर डिज़ाइन करने के लिए हम कहाँ डिज़ाइन ट्रेस करें ये भी तो तय करना होगा।
बिल्कुल,
तो ये तय करना प्लेसमेंट कहलाता है। प्लेसमेंट का मतलब है कि आप साड़ी कर रहे हैं तो आप देखिए, आपको हो सकता है बॉर्डर चाहिए, हो सकता है आपको बूटी चाहिए, हो सकता है आपको पल्लू चाहिए, तो जहाँ जहाँ आपको चाहिए पहले वो तय करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले डिज़ाइन कहीं पे भी ट्रेस कर लिया वो वहाँ से आ जाएगा, नहीं। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आपको डिजाइन के ऊपर करनी है तो आपको वो प्लेसमेंट करना है कि हमको क्या करना है
जी।
एक एग्जांपल हम टेबल क्लॉथ का लेते हैं, टेबल क्लॉथ आपका सेंटर भी एम्ब्रॉयडर हो सकता है, कॉर्नर्स भी हो सकते हैं, बॉर्डर भी हो सकता है, बॉर्डर प्लस बूटी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है
जी।
तो उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट करना होगा कि हम क्या क्या करें। तो ये जो चीजें आपने देखी हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि क्या क्या हम डिजाइनिंग करें। तो अब हम बात करेंगे एक तरह का कोई भी एग्जाम्पल लेकर
जी।
ये आपने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मोटिव क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है, फिर हमने उससे पैटर्न बनाया, फिर हमने डिजाइन बनाया, फिर हमने कोई भी कपड़ा लेके देखा कि किस तरीके से हम उसको डिजाइन बनाने के बाद कैसे प्लेस करेंगे, क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का हमारे पास टेबल क्लॉथ है जिसके हमको 4 कॉर्नर एम्ब्रॉयडर करने हैं। तो एक तो ये टेबल क्लॉथ हो गया, एक हम गारमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक हमारे पास 2 साल की बच्ची की हमको फ्रॉक करनी है जिसमें हमको योक एम्ब्रॉयडर करना है। तो अब वहां से शुरू करते हैं कि हमको जब टेबल क्लॉथ करना है तो हम वहां पे हमने सोचा कि क्यों ना हम कॉर्नर्स पे कुछ हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना लें। तो हमने एक डिजाइन हमने लाइन से बना लिया, सपोज एक डमरू टाइप का हमने बना लिया, उसकी छोटी छोटी हमने एजेस बना ली और उसको हमारा वो हमारा मोटिव हो गया। ठीक है, वो मोटिव को हमने पास पास रख के हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया। उस पैटर्न को हमने लाइन में अलग अलग साइज में बनाया, 3 साइज हमने उस पैटर्न के, तो हमने वो भी सीख लिया कि रिडक्शन कैसे करते हैं और एनलार्जमेंट कैसे करते हैं, वी हैव लर्न्ड दैट। अब इसको हमने प्लेस करना है 4 कॉर्नर पे, यानी कि हमने 2 इंच के बॉर्डर पे 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच, यानी कि हमारा 1 मीटर था। और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब टेबल क्लॉथ हमारा किनारा उसका डिज़ाइन होगा या उसको मोड़ा जाएगा, इसको तुरपाई करेंगे या झालर लगाएंगे, तो यानी कि बिल्कुल एज पे तो नहीं ट्रेस करेंगे, तो वो बॉर्डर का साइज भी हमें चुन के थोड़ा सा आगे जाके हमें ट्रेस करना होगा
जी।
फॉर एग्जांपल 4 इंच हमने चारों तरफ से छोड़ दिया, फिर हमने उसके कॉर्नर का डिज़ाइन ट्रेस करा। अब कॉर्नर पे क्या बात होती है कि एक स्लांट भी आता है, तो वो भी हमें डिज़ाइन को देखना पड़ेगा कि स्लांट हो मगर डिज़ाइन ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि डिज़ाइन हमारा स्लांट में इधर से भी डाल दिया जाए, तो उसको हम पहले ही डिज़ाइन को इस तरीके से प्लेस करके देख लें पेपर पे कि वो प्लास है तो किस तरीके से वो डिज़ाइन जो हमने डमरू बनाया था वो आधा आधा दोनों तरफ आएगा और टेढ़ा आएगा, सीधा रखेंगे तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। हम उसी की बूटी भी डाल सकते हैं
जी।
तो ये हमारा प्लेसमेंट हो गया, और मेरे ख्याल से डायरेक्ट ना करके कार्बन पेपर या बैक पेपर, और इसके लिए हम टेम्पलेट अगर छोटा है तो टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बैक ट्रेसिंग हमारे लिए ठीक रहेगी और बटर पेपर भी ठीक रहेगा। क्योंकि कार्बन पेपर रखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं और वो कहीं ना कहीं हमारी प्लेसमेंट का जो है प्रोपोर्शन है वो बिगड़ सकता है। तो आपने देख लिया हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और चूंकि हमारा सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे प्लेसमेंट करना है उसको। फिर हम आए एक फ्रॉक और हमको डिज़ाइन करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, और योक हम चाह रहे हैं कि योक में जरूर सामने दिखेगी, हम योक करें, तो क्या हमारे लिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ठीक रहेगा? कुछ लग रहा है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है बच्चे का, नहीं तो कुछ ना, चलो हम ऐसा करते हैं कुछ स्टाइलाइज करते हैं, डेकोरेशन हो और बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लावर्स, थोड़े बर्ड्स या इस तरीके से डिज़ाइन बनाएं, और बहुत हैवी ना बनाएं, और इस तरीके से बनाएं कि वो वैसे हो जाए, उसके अंदर भी अस्तर लगाएं जिससे उसको वो छुबे
भी नहीं।
या ऐसा कर सकते हैं कि हम योग तो डबल जनरली बना लेते हैं, कॉलर पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसको चुभने का कोई रास्ता भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा बॉर्डर उसके नीचे बना। तो हम ये बार बार देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो छोटी छोटी हमने लीव्स डिज़ाइन कर ली, हमने एक गोला डिज़ाइन किया, वहाँ पे हम स्टिच सोचेंगे कि ये फूल बनेगा, एक लाइन बना ली हमने यहाँ पे, ये तो तब हम एम्ब्रॉयडरी स्टिच सोचेंगे कि क्या क्या बनाए. अभी हमने सिर्फ प्लेसमेंट सोचा है कि योक में थोड़ा सा दिखना चाहिए, दो दो लाइनें हमारी वहाँ, तो एक छोटा सा हमारा एक इंच का भी जो हमने मोटिव है वही हमारा जगह जगह लेंदन होकर हो जाएगा, वही हमारा थोड़ा एनलार्ज करके हम उसको डिज़ाइन उसके नीचे फ्रॉक में डाल सकते हैं और उसको नैरो करके उसकी स्लीव पर डाल सकते हैं. तो ये हमारा जो चीज़ है आराम से प्लेस हो जाएगी. अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अभी एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो जनरली हम स्टिच्ड गारमेंट पे नहीं करते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि स्टिच्ड गारमेंट पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है. जो ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडरी होती है या कहीं पर भी होती है एम्ब्रॉयडरी अनस्टिच्ड गारमेंट पे होती है, और वहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना होता है कि वो एरिया जो स्टिच के अंदर आएगा और जो बाहर पहन के स्टिच करने के बाहर दिखेगा वो गैप हम रखें. एक एग्जांपल मैं दे और आपको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन का देती हूँ. हमारे यहाँ कच्छ एम्ब्रॉयडरी, गुजरात की एम्ब्रॉयडरी, काफ़ी डिज़ाइंस हैं, पर्सेस आते हैं, कुशन कवर आते हैं कई जगहों पे एम्ब्रॉयडरी, वो कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं और आप देखोगे कि कुछ उसमें मिलेगा नहीं कि ये स्क्वायर है या कुछ है, फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है. तो जैसे मैं आपका डिज़ाइन अभी कह रही थी कि भाई आपका अट्रैक्टिव बहुत है मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इसमें क्या आर्ट है आपकी कि आपने जो फूल लिया या ट्रायंगल लिया उसको आपने कोई भी प्लेस में रख दिया
जी,
स्क्वायर में आपने थोड़ा सा कर्व डाल दिया, आपस में आपने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया, एम्ब्रॉयडरी करी और बीच में आपने मोटा सा धागा डाल दिया, उसको आपने डिफरेंट बैक स्टिच से डाल दिया, तो वो भी आपका एक अलग एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो गया और उसी से ही आपने पूरा का पूरा कुशन कवर या टेबल क्लॉथ या पर्स भर दिया
जी.
तो एम्ब्रॉयडरी भी हो गई और ये भी, और ये तो आपकी डिज़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से. और ये डिज़ाइन हमारी मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी तरीके यही हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी में भी तरीके यही हैं और ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें भी तरीके यही हैं. तो इस तरीके से हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं
जी.